قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اولاد کا تحفظ، پروٹیکشن آف چلڈرن۔ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اولاد کی حیثیت کیا ہے بائبل مقدس کے مطابق۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے ملنے والی برکت ہے، اولاد حادثہ نہیں ہے، اولاد بوجھ نہیں ہے، اولاد ہمارے لیے مصیبت نہیں ہے، اولاد جیسی بھی ہے خدا کی طرف سے برکت ہے۔ خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو اولاد عطا کرے، خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو کیسی اولاد عطا کرے، خدا کے اختیار میں ہے، خدا کی طرف سے وہ برکت ہے۔ بتھیرے ہیں جن کے پاس یہ برکت نہیں ہے، بہت بڑے بڑے ایماندار لوگ ہیں جن کے پاس یہ برکت نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت بڑے بڑے ایمان میں سورما لوگ ہو گزرے ہیں کہ جن کے پاس اولادیں نہیں تھیں، لیکن کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ میں سے بہتوں کو خدا نے یہ برکت عطا کر رکھی ہے۔ جو لوگ اولاد، چاہے اس کی فزیکل، مینٹل کوئی بھی کنڈیشن ہے، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اولاد کی کوئی بھی کیفیت ہے، جو اسے بوجھ سمجھتے ہیں یا سزا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو درست کریں۔ اولاد خدا کی طرف سے اجر ہے، ریوارڈ ہے، برکت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور اولاد صرف خدا عطا کر سکتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے اولاد عطا کرنا۔ لہذا کسی دربار پہ جانا، کسی پیر فقیر کے پیچھے جانا، کسی انسان کے پاس جانا، کسی شبیہ یا صورت یا مورت کے سامنے جا کے کہنا کہ ہمیں اولاد دے، اس کے بس میں نہیں ہے، صرف خدا اولاد عطا کرتا ہے۔ اولاد مال و دولت اور کامیابیوں سے زیادہ اہم ہے۔ ابراہم بڑا دولت مند تھا لیکن اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ابراہم ابھی تازہ تازہ جنگ جیت کے آیا تھا، اور اس کے بعد خدا ظاہر ہوتا ہے ابراہم پر اور اس سے کہتا ہے، میں تیری سپر ہوں اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اتنی بڑی کامیابی کے بعد، اتنی بڑی اچیومنٹ کے بعد، ابراہم خدا کے سامنے ایک شکوہ کرتا ہے، گلا کرتا ہے کہ کیا فائدہ اس سارے اونچے نام کا اور فتح اور کامیابی کا اور مال و دولت کا جب میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ مال و دولت اور کامیابیاں یہ اولاد سے کم ہیں۔ اولاد کا رتبہ، اولاد کی حیثیت، آپ کے مال و دولت، آپ کے اونچے مقام، مرتبے، سٹیٹس سے، آپ کی کامیابی اور زندگی کی اچیومنٹ سے بہت زیادہ ہے۔ سو دنیاوی چیزیں کبھی بھی اولاد کے مقابلے میں افضل نہ سمجھیں۔ اولاد کو پرائیورٹی دیں، اولاد کو اولیت دیں، اولاد کو افضل سمجھیں، اپنی اولاد کے زیادہ قریب رہیں اور ان کی خوشی، ان کی بہتری اور بھلائی کی فکر کریں، نہ کہ دنیا فتح کرنے کی اور مال و دولت اکٹھا کرنے کی۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کی قدر برابر ہے۔ اولاد کے لیے ایک ہی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ جب کہا گیا اولاد خدا کی طرف سے ہے اور پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے ہے، وہ اجر بھی ہے، وہ میراث بھی ہے، وہ برکت ہے، وہ ریوارڈ ہے، تو یہ نہیں لکھا کہ بیٹا تو خدا کی طرف سے اجر اور میراث ہے اور برکت ہے اور بیٹی نہیں۔ نہیں، وہاں اولاد لکھا ہے، یعنی بچے، چلڈرن۔ وہاں یہ الگ الگ نہیں رکھا گیا کہ جی بیٹا تو بڑی برکت ہے اور بیٹی نہیں ہے۔ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، दोनों की वैल्यू, दोनों की कद्र एक जैसी है। खुदावंद यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी है, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे बेटे हैं, चाहे बेटियां हैं। और गलतियों तीसरे बाब की 28वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह में ना कोई मर्द रहा ना औरत, सब एक हो गए। मसीह में सब एक हो जाते हैं। सो ईमानदारों को बेटों और बेटियों में फर्क नहीं रखना चाहिए, दोनों की वैल्यू, दोनों की कद्र, दोनों की हुर्मत एक जैसी है। खुदा का मुकाम औलाद से बहुत ज्यादा है। हमने बात की कि दुनियावी मालो दौलत से और कामयाबियों से, अचीवमेंट से और रिचेस से औलाद का मुकाम ज्यादा है, लेकिन अब यह याद रखना है कि खुदा का मुकाम औलाद से ज्यादा है। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है, उसमें मेरी मोहब्बत नहीं है। सो हमें खुदा से मोहब्बत ज्यादा करनी है, अपनी औलाद से भी ज्यादा। खुदा ने हुक्म दिया, तेरा इकलौता बेटा इसहाक, उसे कुर्बान कर दे, हाजिर। अब्राहम को हमूरिया पर उसे ले गया कुर्बान करने के लिए। खुदा ने उसकी फरमा बरदारी देख ली, कबूल कर लिया। तूने इरादा किया, तू लेके आया, तूने लटा दिया और छुरी तूने उठा ली और वार करने को था कि अपने बेटे को जबह करे। आवाज आई, अब्राहम अब्राहम अपना हाथ रोक ले। उसकी जगह मेंढा दे दिया गया, लेकिन खुदा का हुक्म अफजल है, खुदा अफजल है, खुदा की बातें अफजल हैं। प्रायोरिटी खुदा को और उसके कलाम को है, उसकी मर्जी को है, औलाद को नहीं है। कभी औलाद की वजह से खुदा से दूर ना हो जाए कि मुझे औलाद चाहिए खुदा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा किसी और आस्ताने पे, किसी और के दरवाजे पे मैं जाके माथा टेकूंगा। नहीं, खुदा ज्यादा अहम है और उस पर ईमान ज्यादा अहम है, औलाद से खुदा ज्यादा अहम है। और जीवन साथी का मुकाम औलाद से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसमें मिसालें देखी जा सकती हैं। अब्राहम और सारा की औलाद नहीं थी, सारा को छोड़ा नहीं। इसहाक और रिबका की बहुत वक्त बे औलादी रही, रिबका को छोड़ा नहीं। अलकाना और हन्ना समुएल के वालदैन, कितना अरसा बे औलाद रही हन्ना, लेकिन उसका शोहर कभी उसे ताना नहीं देता, हमेशा उससे हमदर्दी की कि कोई बात नहीं, तेरे औलाद नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा और तेरा रिश्ता औलाद से बहुत भड़के है, 10 बेटों से भड़के है। जकरिया और अलिश्बा बूढ़े हो गए, अब तो उम्मीद भी ना रही थी, एक दूसरे से वफादार रहे। औलाद ना होने की वजह से रिश्ता खत्म नहीं किया। सो मियां बीवी का रिश्ता, जीवन साथी का मुकाम औलाद से ज्यादा अहम है। जीवन साथी को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए औलाद के मुकाबले में। अब बात करेंगे कि हमारी औलाद को मुमकिना खतरात क्या हो सकते हैं, क्योंकि हम तहफ्फुज की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमें खतरों का पता होना चाहिए। पहला खतरा हमें बीमारियों से होता है। औलाद पैदा हो जाती है या भी मां के पेट में हो तो हमें फिक्र पड़ जाती है कि कोई बीमारी ना लग जाए इसे। हम अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, डाइट प्रॉपर रखी जाती है ताकि पेट में पलने वाली औलाद सेहतमंद रहे। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो खतरा रहता है बीमारियों से, इंफेक्शन से। इसीलिए वैक्सीन हैं, हिफाजती टीके हैं जो बराबर लगवाए जाते हैं पैदाइश के वक्त से लेकर। और फिर खतरा है कि हमारी औलाद किसी हादसे का शिकार ना हो जाए, एक्सीडेंट्स ना हो जाएं, घर में कोई हादसा ना हो जाए या बाहर हादसा ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ऐसा ना हो जाए जैसे घर में होता है, कभी दीवार गिर जाती है, कभी छत गिर जाता है, कभी कोई फर्नीचर की आइटम गिर जाती है या स्लिप हो जाता है बच्चा, या कोई घर में मोटरसाइकिल है या साइकिल है तो वो गिर जाती है, या आग से बच्चे जल सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से बच्चों को नुकसान हो सकता है, या रास्ते में खेलते हुए, सड़क पे खेलते हुए, गली में खेलते हुए खतरा रहता है। हमारे बच्चे के साथ कोई अनहोनी, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट ना पेश आ जाए, फिर जिस्मानी और रूहानी दुश्मनों से खतरा रहता है। सादा लफ्जों में कह दूं कि हमें अपने शरीके बरादरी में यह खतरा रहता है कि कोई हमारी औलाद को मार ना दे, उन्हें नुकसान ना दे दे, या उन पे कोई वार ना कर दे, कोई शैतानी वार, कोई जादू तावीज टूने का वार ना कर दे। तो ये खतरे हमें रहते हैं, और ये शैतान की तरफ से भी खतरे हमें रहते हैं, ना सिर्फ इंसानों की तरफ से, शैतान भी हमारे बच्चों का दुश्मन है। सो रूहानी हमले भी होते हैं, सो जिस्मानी और रूहानी दुश्मन से हमें खतरा है, हमारी औलादों को खतरा है, और औलाद को जहनी दबाव, मेंटल डिप्रेशन और स्ट्रेस से खतरा है। कई तरह का दबाव हमारी औलाद पे हो सकता है, पढ़ाई का दबाव हो सकता है, मुकाबले का दबाव हो सकता है कि जी उसका बच्चा तो ज्यादा अच्छा पढ़ता है और आपका नहीं। मैंने एक इमेज देखा, उस पर हाथी अपने बच्चे को समझा रहा है कि देखो कव्वे का बेटा कितनी अच्छी परवाज करता है और तू नहीं सीख सका उड़ना। हमारा हाल ऐसा है, हर बच्चे का टैलेंट अलग है, उसकी खूबियां अलग हैं, और हम सब बच्चों को एक दूसरे से मुकाबले में खड़ा कर देते हैं। ये समझना चाहिए हर एक बच्चे की खूबियां अलग हैं, उसकी कैपेसिटी अलग है, उसके टैलेंट्स अलग हैं, उसकी चॉइसेस अलग हैं, हर एक बच्चे की सलाहियत अलग अलग है। हम उन पे दबाव ना डालें। मेंटल स्ट्रेस भी खतरा है हमारी औलादों के लिए, हम उन पे बहुत दबाव डाल देते हैं, अपनी मर्जियां थोप देते हैं, या हम दूसरों की मर्जियां उस पे थोप देते हैं। देखो तुम्हारे अंकल तुम्हारी आंटी चाहते हैं कि तुम फर्स्ट आओ और तुमने आना है। सो जहनी दबाव नजर नहीं आता, लेकिन यह बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों की तरफ से भी खतरा हो सकता है, फैमिली की तरफ से भी खतरा हो सकता है, यह जहनी दबाव बहुत परेशान करता है। बेजा तनकीद, मजाक और बेइज्जती, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, बुलिंग एंड इंसल्ट, घर में से लोग करते हैं, फीना, उसके कद को मजाक करना, उसकी आंखों को मजाक करना, उसकी जुबान का मजाक उड़ाना, उसके फीचर्स का मजाक उड़ाना, उसकी मुख्तलिफ हरकतों का मजाक उड़ाना। दोस्तों में होता है कि एक ही बंदे को टारगेट कर दिया जाता है और उससे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उससे ऐसे में मजाक किए जाते हैं कि जो उसे बर्दाश्त नहीं होते। इससे खतरा है हमारी औलादों को, हमें मजाक करते हुए महफिल में बैठे हों, चंद दोस्तों में बैठे हों, फैमिली में बैठे हों, हमें ऐसा मजाक नहीं करना जो किसी के लिए जहनी अजियत का सबब बन जाए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए खतरनाक है। स्कूल में अगर कोई उन्हें बुली करता है, कोई उनका मजाक उड़ाता है, कोई उन्हें दबाव में रखने की कोशिश करता है, तो ये हमारे बच्चों के लिए खतरा है। कोई हमारे बच्चों को इंसल्ट करे, उनकी बेइज्जती करे पब्लिकली लोगों के सामने, तो खतरा है। मां बाप सबके सामने अपने बच्चों को जैसे मर्जी बोल लेते हैं, लेकिन हर बार फायदा नहीं होता, बच्चे बेइज्जती महसूस करते हैं। सो ये खतरा है हमारी औलाद के लिए, बेजा तनकीद करना, मजाक करना, या उन्हें बेइज्जत करना, और जिनसी इस्तेहसाल और तशद्दुद, सेक्सुअल अब्यूज एंड वायलेंस, ये भी खतरा है। ये मत सोचें कि छोटे बच्चे हैं क्या हो जाएगा इन्हें, नहीं, कितने वाकयात हैं जो हो रहे हैं हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज और वायलेंस किया गया है, मार दिया गया है, जिनसी इस्तेहसाल और तशद्दुद किया गया है, रेप किया गया बच्चों को, लड़के हैं या लड़कियां हैं, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं देखा जाता, रेप किया जाता है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता। यह खतरा है, हमें इस खतरे को समझना है कि हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। कोई भी कहीं भी हमारे बच्चों के लिए खतरे का बायस बन सकता है, वो उनका जिंसी इस्तेहसाल कर सकता है, उन पर जिंसी तशद्दुद कर सकता है। हमें इसे समझना है। अगर आंखें बंद कर लेंगे तो इसका यह मतलब नहीं कि खतरा नहीं है, खतरा मौजूद है, हमें समझना है और उसका मुकाबला करना है। और रूहानी या दीनी गुमराही भी खतरा है बहुत बड़ा हमारे बच्चों के लिए। उन्हें रूहानी तौर पर, दीनी तौर पर, ईमान के एतबार से गुमराह कर दिया जाता है कि तुम्हारा दीन अच्छा नहीं, तुम्हारा मजहब अच्छा नहीं, तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है, तुम्हारा ईमान ठीक नहीं है, तुम छोड़ दो इसे, तुम हमारे पास आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, देखो तुम्हें क्या कुछ मिलेगा इस ईमान की वजह से। हमारा ईमान अपना लो, हमारा अकीदा अपना लो, हमारे मजहब में आ जाओ तो तुम्हें क्या कुछ मिलेगा। तो ये दीनी या रूहानी गुमराही भी बहुत बड़ा खतरा है। लालच दिया जाता है लोगों को, ख्वाब दिखाए जाते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि उसे छोड़कर इधर आ जाओ तो बहुत कुछ मिलेगा। बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। कोई भी कहीं भी आपके बच्चे के लिए दीनी या रूहानी गुमराही का सबब बन सकता है। आपको इस खतरे को समझना है। जब तक हम खतरा किसी बात को समझेंगे नहीं, हम उसका मुकाबला नहीं करेंगे, हम खामोश रहेंगे। ओ ये कौन सी खतरे की बात है, ये कौन सी परेशानी की बात है। बहुत सारे नाखुशगवार वाकयात इसी वजह से होते हैं कि हम इन बातों को खतरा नहीं समझते, हम इन बातों की सीरियसनेस, इनकी शिद्दत नहीं समझते कि किस हद तक ये हमारी औलादों को नुकसान दे सकते हैं, उन्हें दुख में मुब्तला कर सकते हैं, उनकी जिस्मानी, जहनी और रूहानी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और सिर्फ औलाद की नहीं होती, खानदान की होती है। खानदान जिस्मानी, जहनी और रूहानी कर्ब से गुजरता है। इसलिए ये बड़ों को, वालिदैन को समझना है, खानदान के बड़ों को समझना है कि खतरा है क्या, कहां से खतरा है, क्या चीजें और क्या बातें खतरा है हमारी औलाद के लिए। सो खतरा समझने के बाद अब यह सवाल पैदा होता है कि औलाद का तहफ्फुज कैसे किया जाए। सबसे बड़ी हकीकत हमें यह समझनी है कि वालिदैन अपनी औलाद के तहफ्फुज के जिम्मेदार हैं। कोई हमसाया नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, वालिदैन अपनी औलाद की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। हम किसी और को इल्जाम नहीं दे सकते कि जी उसने हमारी औलाद की हिफाजत नहीं की, या उसने हमारी औलाद के साथ गलत होने दिया। बतौर वालिदैन हमें यह जिम्मेदारी कबूल करनी है कि हम अपनी औलाद का तहफ्फुज यकीनी बनाएं, किसी और पे नहीं छोड़ना, यह हमारी जिम्मेदारी है। जब खूबसूरत बेटा पैदा हुआ, नाम बाद में उसको मूसा दिया गया, लेकिन उसके मां बाप जो जिस्मानी मां बाप थे, उन्होंने उस बच्चे की हिफाजत के लिए पूरी कोशिश की, उसे छुपा के रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया, बाहर खबर नहीं होने दी, घर के अंदर बातें रखी, घर के अंदर बच्चे की आवाज को इस तरह से उन्होंने शायद दबा के रखा होगा कि बाहर इसका शोर ना जाए, इसके शायद रोने की आवाजें भी बाहर ना जाए, उन्होंने छुपा के रखा, किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। घर में बड़ा भाई और बड़ी बहन भी है, उन्होंने भी अपने छोटे भाई की बाबत किसी को नहीं बताया, खामोश रहे। फैमिली सीक्रेट के तौर पर, खानदानी राज के तौर पर बच्चे का वजूद छुपा के रखा। और जब देखा कि और नहीं छुपा सकते, वजह यह थी कि हुक्म था उस जमाने में, उन बरसों में, उन महीनों में कि किसी इब्रानी का बेटा पैदा हो तो मार दिया जाए, उन्होंने पूरी कोशिश की उसे बचाने की। और फिर जब ज्यादा देर छुपा ना सके तो एक बास्केट, एक टोकरी बना दी। मां ने यह मेक श्योर किया कि उसमें पानी ना भरने पाए, उसे मिट्टी और राल लगाकर, चिकनी मिट्टी और राल लगाकर सरकंडों की टोकरी तैयार की गई और उसमें बच्चे को रख के पानी में छोड़ दिया गया। और बड़ी बहन मरियम वो उसे देखती रही कि मेरे भाई के साथ क्या होता है। वो देखती रही, देखती रही, देखती रही कि वो टोकरी शायद बहती बहती ऐसी जगह पहुंच गई जहां फिरौन की बेटी गुस्ल कर रही थी। वो रुकी नहीं कि ठीक है अब उन्होंने उठा लिया, वो गई, पहुंची फिरौन की बेटी के पास और उससे कहा कि इसके लिए अगर तुझे दूध पिलाने वाली औरत की जरूरत हो तो मैं उसका इंतजाम कर सकती हूं। पूरी फिक्र की, ध्यान रखा, यह खानदान की जिम्मेदारी है, यह बड़ों की जिम्मेदारी है, मां बाप की जिम्मेदारी है, बड़े बहन भाइयों की जिम्मेदारी है, खानदान के बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि औलाद का तहफ्फुज़ करें। सलातीन की दूसरी किताब चौथा बाब और उसकी पहली 7 आयात में एक नबी की बेवा का जिक्र है। वो अपने बेटों को लेकर अलीशा नबी के पास जाती और कहती है कि मेरा शौहर तेरा खादिम एक नबी था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, कर्ज हम पर चढ़ गया है और जो कर्ज लेने वाला है, जो कर्ज खा है, वो कहता है कि मैं तेरे बच्चों को गुलाम बना के ले जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ कर, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उसके गुलाम बने। कोशिश की उसने, जिम्मेदारी का उसने इजहार किया कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने बेटों के तहफ्फुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। और फिर अलीशा नबी ने उसको हुक्म दिया कि बर्तन इकट्ठे कर और घर में जो तेल है वो उंडेलती जा और तेल बेच और तेरा कर्ज पूरा हो जाएगा, अदा कर देना और जो बाकी रकम बचे उससे गुजर करना। तो मां बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की तरफ आते हुए खतरों से उन्हें बचाएं। इस जिम्मेदारी को मुझे और आप सबको जो वालिदैन हैं और जो घरों में बड़े हैं, हमें कबूल करना है और इसे पूरा करना है। वालिदैन अपनी औलाद की जरूरियात खुद पूरी करें, किसी को मौका ना दे के वो आपके बच्चों को खिलौने दिला दे, किसी को मौका ना दे के आपके बच्चे को टॉफियां, कैंडीज, आइसक्रीम, चॉकलेट दिलाए। ये एक ट्रैप हो सकता है कि कोई आपके बच्चे को लालच देकर, 1, 2, 4 बार उसको कोई चीज देकर, तोहफा देकर, पैसे देकर वो अपनी तरफ खींच ले और फिर उसका इस्तेहसाल कर दे, उसे अब्यूज कर दे, उसे नुकसान पहुंचा दे। मां बाप मेक श्योर करें आपके बच्चे की जरूरत आप पूरी करो। कभी अपनी औलाद को यह इजाजत ना दे कि वो किसी और से कोई चीज कबूल करे। अपने बच्चों को यह सिखाएं कि जब तक आपके मां बाप मौजूद ना हो और वो आपको इजाजत ना दे कि बेटा आप ले लें, तब तक आपने किसी और से कोई खाने वाली चीज, कोई पहनने वाली चीज, कोई इस्तेमाल में आने वाली चीज, कोई खिलौना नहीं लेना। आप अपनी औलाद की जरूरतें पूरी करें, किसी और को मौका ना दें कि वो ये बहाना बना के आपकी औलाद के करीब आ जाए और फिर आपकी औलाद आपसे छिन जाए। और वालिदैन अपनी औलाद को ये बताएं, ये सिखाएं कि बेटा हमारे हालात कैसे हैं, हमारे पास इतने ही वसाइल हैं, हमारे पास ज्यादा दौलत नहीं है, हम दूसरों की तरह आपको 4-व्हील गाड़ी नहीं दिला सकते, हम दूसरों की तरह आपको PlayStation 4, 5, 6 जितना भी उसका लेटेस्ट वर्जन है वो नहीं दिला सकते, हम आपको आपकी पॉकेट मनी दूसरों के बराबर नहीं कर सकते, हम आपको वो वाले खिलौने, वो वाले कपड़े, वो वाली चीजें जो दूसरे पहनते हैं हम नहीं दिला सकते, हमारे वसाइल कम हैं, हमारी आमदनी कम है और हमने अपने खानदान के वसाइल देखते हुए इस्तेमाल करने हैं। جس بچے کے دل میں شوق آ جائے کہ مجھے نیا سمارٹ فون چاہیے اور ماں باپ نہیں دلا سکتے, کوئی بھی دلا دے اسے وہ تو لے لے گا نا, اور پھر وہ اس کا غلام بن جائے گا, جیسے چاہے یوز کرے گا اسے. سو اپنی اولاد کو بتائیں, بیٹا ہو یا بیٹی, انہیں بتائیں ہمارے وسائل کتنے ہیں, ہماری آمدنی کتنی ہے, ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں. اپنی اولاد کو بتائیں, چھپائیں نہیں, پریٹینڈ نہیں کریں ان کے سامنے کہ ہم بہت امیر ہیں, انہیں بتائیں, صاف بتائیں کہ بیٹا ہماری آمدنی اتنی ہے, ہمارے وسائل اتنے ہیں اور اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. والدین اپنی اولاد کی حرکات پر نگاہ رکھیں, ان کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھیں, بچہ کیا کرتا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ کے کیا حرکت کر رہا ہے, کس سے زیادہ ملتا ہے, یہ گھر میں بیٹھا کیا حرکتیں کرتا ہے. اگر فون یوز کرتا ہے تو کیا اس میں دیکھتا سنتا یا کام کرتا ہے, اگر ٹیلی ویژن یا کیبل یا کوئی بھی مینز آف ریکریشن یوز کرتا ہے تو اس میں اس کی کیا چوائسیز ہیں, اس کی دلچسپی کن کاموں میں ہے, کیا کر رہا ہے آج کل, کن راستوں پہ چل رہا ہے, کیا یہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہے, کیا یہ ہم سے چھپ چھپ کے کوئی کام کرتا ہے, یہ راتوں کو کہاں غائب رہتا ہے, یہ دن میں کہاں غائب رہتا ہے, فون دیا ہوا ہے لیکن سوئچ آف رہتا ہے, بزی رہتا ہے, کہاں ہے. اپنی اولاد کی حرکتوں پہ نگاہ رکھیں. بہت پرانا محاورہ ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی نگاہ سے. اولاد کو جتنی مرضی سہولتیں اور آسانیاں دیں لیکن ان پہ نگاہ رکھیں. اور پھر والدین اپنے گھر میں آنے والے لوگوں کی باتوں, عادتوں اور رویوں سے آگاہ رہیں. ہمارے گھر میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ کون ہیں, وہ کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے گھر میں آ کر ہم سے یا ہماری اولاد سے, اور ان کی عادتیں کیا ہیں, ان کی حرکتیں کیا ہیں, ہمارے گھر میں آ کے وہ کیا کام کرتے ہیں, کہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں, وہ کیا چیزیں لیتے ہیں, وہ کس بچے یا بچی کو اپنے پاس بلاتے ہیں, یا کس کے ساتھ وہ گفتگو میں الجھے رہتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں, اور ان کے رویے کیسے ہیں. خدا کے کلام میں کئی جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ جو برائی کی راہ پر چلاتے ہیں ان سے تو دور رہنا ہے, ایسے لوگ جو تمہیں ایمان سے دور کر دیں, ایسے لوگ جو تمہیں گناہ کی طرف لے جائیں, ایسے لوگ جو تمہاری سوچ اور تمہارے ذہن اور تمہارے بدن جان اور روحوں کے لیے خطرے کا باعث بنے, انہیں گھر میں بھی گھسنے نہ دو, انہیں گھر میں داخل نہ ہونے دو, انہیں دور رکھو اپنے گھروں سے جو خطرے کا باعث بنے. سو گھر میں کوئی بھی آ رہا ہے, اپنا ہے, پرایا ہے, رشتہ دار ہے, غیر ہے, سب پر نگاہ رکھیں. باہر اس کی شہرت کیسی ہے, اور لوگ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آ رہا ہے, توجہ رکھیں اس پہ. آنکھیں کان منہ بند رکھیں گے تو بہت بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, پھر آپ کہتے ہو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. خود آبزرو کیجئے, دھیان رکھیے آپ کے گھر میں جو کوئی بھی آ رہا ہے. اور والدین اپنی اولاد کے دوستوں اور رابطوں پر بھی نگاہ رکھیں, کن سے دوستی ہے میری اولاد کی, کون ہے اس کے دوست, کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا, دوست کیا کام کرتے ہیں, ان کی کیا عادتیں ہیں, ان کا گھر بار کیسا ہے, ان کے پس منظر کیا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور آپ کی اولاد کس سے رابطہ رکھتی ہے, کمیونیکیشن کس سے کرتے ہیں, فونز پہ, کالز پہ, چیٹنگ پہ, سوشل میڈیا پہ, یا ان پرسن, یا شخصی طور پر ملاقاتوں میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں, ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے ان دوستوں میں, نگاہ رکھیں اس پہ. پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کی اولاد کے دوست کون ہیں, وہ کس خاندان کے ہیں, ان کا پس منظر کیا ہے, ان کی عادتیں کیسی ہیں, ان کی شہرت کیسی ہے, ان کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے, उनकी पसंद क्या है, उनकी आदतें रवैये कैसे हैं, और आपकी औलाद किससे क्या बातें कर रही है, इस पर तवज्जो करें। माँ बाप इग्नोर करते हैं, जवान लड़का है जवान लड़की है फोन पे लगे हुए हैं, अक्सर देखते हैं कोई नहीं पूछता कि बेटा किससे बात हो रही है, जरा मुझे भी तो दो, मैं भी तो देखूं। तवज्जो किया करें, बेटा है या बेटी दोनों पे एक जैसी तवज्जो रखें, और वालिदैन अपनी औलाद को तहफ्फुज की बाबत तालीम दें और दिलवाएं। अपनी औलाद को बताएं कि बेटा आपको खतरा हो सकता है लोगों से, आपको खतरा हो सकता है ऐसे लोगों से जो आपको चीजें देंगे, उनको बताएं कि कोई आपको बदन पे टच ना करे, उनको बताएं कि कोई अगर आपके साथ इस तरह से सलूक करे तो भागे वहां से। अपनी औलाद को समझाएं और सिखाएं उन्हें कि आपने किसी की बातों में नहीं आना, कोई हमारे बारे में आपको बताएगा कि मैं आपसे आपके माँ बाप से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं आपके बहन भाइयों से ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं, कोई आपको कहेगा मैं आपको खिलौने चीजें लेके दूंगा, कोई आपसे कहेगा कि मैं आपको जॉब अच्छी दिला देता हूं, मैं आपको एक महीने में लाखों रुपया कमाने का फन बता देता हूं, अच्छी जगह पर रखवा देता हूं। ये सारे खतरे हैं। अपने बच्चों को बताएं, उनको तालीम दें और दिलवाएं भी। आप ऐसे लोगों से राबता कर सकते हैं जो इस मामले को समझते हैं, आप उनसे कहें हमारी औलाद को समझाएं, हमारी औलाद को बताएं कि कहां से उन्हें खतरा हो सकता है और वो कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। औलाद के तहफ्फुज के लिए जरूरत हो तो सुकूनत भी तब्दील कर लें। एक जगह पे आपको ये महसूस हो रहा है कि यहां हमारी औलाद महफूज नहीं है, यह बिगड़ जाएगी, इसका नुकसान हो जाएगा, यह बर्बाद हो जाएगी या हमसे छिन जाएगी, कोई भी खतरा किसी भी किस्म का आपको महसूस होता है उस जगह पर, आप वहां से सुकूनत तब्दील कर दें, अपनी रहायशगाह तब्दील कर दें, वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाएं। अपनी औलाद को सिक्योर करें, अपनी औलाद को महफूज करें, उसे दुश्मनों के हाथों में पड़ने ना दें। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम को हुक्म हुआ कि इस बच्चे को मारने के लिए हेरोदीस सिपाही भेज चुका है, ढूंढ रहे हैं इसे, इसे मारना चाहते हैं, इसे लेकर मिस्र चला जा, दूसरे मुल्क चला जा, वहां कयाम किया, अपने बाप दादा का वतन छोड़ा, दूसरी जगह चले गए, खुदा ने रहनुमाई की, दूसरी जगह चले गए ताकि हमारा बेटा महफूज रहे, उसे नुकसान ना हो। और जब खतरा खत्म हो गया फिर हुक्म हुआ कि अब वापस आ जाओ, क्योंकि बच्चे की जान के जो खाहां थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जहां आपको महसूस हो कि इस जगह पे लोग ऐसे हैं या हालात ऐसे हैं जहां मेरी औलाद खतरे में है, इसे नुकसान हो सकता है, जिस्मानी जहनी रूहानी, वहां से दूर चले जाएं, वो जगह छोड़ दें, अलग हो जाएं, क्योंकि औलाद अहम है मालो दौलत से और जिंदगी की कामयाबियों से, औलाद ज्यादा अहम है। उनके तहफ्फुज़ के लिए जगह तब्दील करनी पड़े तो भी करें। और वालदैन अपनी औलाद को दीनी और रूहानी तालीम खुद भी दें और दिलवाएं भी, इसमें कोई कोताही नहीं करनी, क्योंकि यह बड़ा जरूरी है। हमारे नौजवान बेटे और बेटियां जो नौउम्र होते हैं, कच्चा जहन होता है, अगर वो ईमान और अकीदे में मजबूत होंगे, रूहानी तौर पर उनका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होगा, तो कोई उन्हें वरगला नहीं सकेगा। जिन लोगों का रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है वो अपने रिश्तों के साथ भी मजबूती से जुड़े रहते हैं, क्योंकि खुदा उनके दिल में ये बात डालता है कि ये तेरा खानदान है, तूने इनसे जुड़े रहना है। सो अपनी औलाद को दीनी और रूहानी तालीम खुद भी दें और दिलवाएं भी, कोशिश करें उन्हें खुदा की हजूरी में लाएं, उन्हें तालीम दिलवाएं, बाइबल मुकद्दस की तालीम दिलवाएं, मसीही ईमान की तालीम दिलवाएं, किस तरह से मसीही जिंदगी गुजारनी है इसकी तालीम दिलवाएं, घर में भी तालीम दें और कलीसिया में भी उनको तालीम दिलवाएं, ताकि हमारे बच्चे दीनी तौर पर, रूहानी तौर पर, मजहबी तौर पर ईमान में मजबूत और कायम रहें और कोई उन्हें वरगला ना सके, कोई उन्हें लालच देकर अपने पीछे ना लगा सके, कोई उनके बदन को छू ना सके, कोई उनके जहन और कोई उनकी रूहें बर्बाद करने की कोशिश ना करे, बल्कि हमारी औलादें ईमान और अकीदे में मजबूत हों और वो किसी खतरे को अपने करीब ना आने दें। मां बाप की पहली जिम्मेदारी है और उसके बाद कलीसिया के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों की दीनी और रूहानी तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। इसलिए वालिदैन खुद भी घर में अपने बच्चों को तालीम दें और कलीसिया से भी तालीम दिलवाएं, जो मौका हो तालीम पाने का वहां जरूर उन्हें लेकर जाएं, या जो भी तरीका इस्तेमाल हो रहा है तालीम पाने का उसको इस्तेमाल करें और तालीम दिलवाएं बच्चों को। वालिदैन औलाद के लिए नमूना बने, जो काम हम करते हैं हमारी औलाद वही काम करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरे मां बाप के नजदीक ये काम अच्छा है, ये नॉर्मल है। नमूना देंगे, हम खुद खतरों से दूर रहेंगे तो हमारी औलाद भी समझेगी कि ये खतरे हैं, हमने इनसे दूर रहना है। अगर हम खुद अपने आप को गलत लोगों के साथ जोड़ लेंगे, गलत आदतों में पड़ जाएंगे, गलत कामों में पड़ जाएंगे, गलत सोचों, राबितों और दोस्तों में पड़ जाएंगे, तो हमारी औलाद भी यही काम करेगी। वो भी अपने लिए गलत दोस्त चुन लेगी, वो भी कभी तमीज नहीं कर पाएगी कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। उनके नजदीक हर मिलने वाला दोस्त है। अगर हम माँ बाप होते हुए हर किसी से मांग के तोहफा ले लिया, किसी का कोई शॉल अच्छी लगी कह दिया कि जी ये शॉल बड़ी अच्छी है मुझे दे दो, किसी का कोई रुमाल अच्छा लगा ये मुझे दे दो, किसी का कलम अच्छा लगा तो मुझे दे दो, किसी की घड़ी अच्छी लगी तो मुझे दे दो, जब बच्चों के सामने मां बाप ऐसे मांगते फिरेंगे लोगों से, तो फिर बच्चे भी कहेंगे हम भी किसी से मांग लेंगे, और जो दे देगा फिर बच्चे उसके गुलाम हो जाएंगे। बच्चों को नमूना दें कि हमने लालच नहीं रखना जिंदगी में, हमने किसी पे उस तरह का एतमाद नहीं करना कि वो हमारे घर में घुस जाए और हमें बर्बाद करके चला जाए। हमने आंखें और कान खुले रखने हैं, हमने हमेशा अलर्ट रहना है कि कोई हमारे बदन, हमारी इज्जत और आबरू, हमारे जहन और हमारी रूहों को बर्बाद करके ना चला जाए। हमने बच्चों को नमूना देना है, अच्छी बातों का नमूना देंगे तो बच्चे अच्छा सीखेंगे, गलत कामों का नमूना देंगे तो बच्चे भी गलत रास्तों पर चलेंगे। बच्चों को बेदिल ना होने दें, उन्हें दिक ना करें, बच्चों को थोड़ा स्पेस दें, उन्हें मौका दें कि वो आपसे खुल के बात कर सके। बच्चों को ये एतबार हो अपने मां बाप पर कि मेरी जिंदगी की कोई भी बात जो मैं सच्चाई से अपने मां बाप के साथ शेयर करूंगा या करूंगी, मेरे मां बाप उसे ध्यान से सुनेंगे और फिर उसमें मेरी रहनुमाई करेंगे। जब बच्चों को यह यकीन हो कि बात तो कभी होती नहीं मां बाप से, उनके पास तो वक्त ही नहीं मेरे लिए, मैं कोई बात करूं या कुछ कहने की कोशिश करूं तो मां बाप मां कह देती है बाप से बात कर, बाप कह देता है मां से बात कर, और बात शुरू होने से पहले ही बच्चा कहता है कि ठीक है मैं किसी से नहीं करता। गलती भी है तो बच्चे के अंदर यह जुर्रत पैदा होनी चाहिए कि मेरा बाप और मेरी मां मेरी बात सुनेंगे, वो मेरी बात सुनेंगे और उस पर गौर करेंगे, चाहे नुकसान की बात है। बच्चे को पता हो कि मैं जब स्कूल से, कॉलेज से, जॉब से या बाहर खेल के घर आया हूं और मैं अपने मां बाप को कोई बात बताऊंगा या बताऊंगी तो मेरे मां बाप उसमें एतबार करेंगे। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे हादसात हुए जो मां को या बाप को बताने की जरूरत नहीं हुई, या अगर बताने की कोशिश की तो उसको डांट दिया गया, चुप चुप आइंदा ये बात नहीं करनी, और बच्चे की साइकोलॉजी उसकी नफ्सियात में यह बात आ गई कि मैंने अब अपने मां बाप से कभी कोई बात शेयर नहीं करनी। बेदिल ना करें बच्चे को, दिक ना करें उसे, शिकंजों में ना कसें उसे, इतनी आजादी जरूर दें कि वो खुल के आपके पास बैठ के आपसे बात कर सके और अपने दिल में जो भी है वो आपसे कह सके। सो बच्चों को बेदिल ना करें, कोई भी बात करें सुने, तवज्जो करें उस पर। जरूरत हो तो टोक दें, मशवरा दें, इस्लाह करें, लेकिन सुने जरूर। वालिदैन को शिकायत लोग लगा देते हैं, जी आपके बच्चे ने ये किया है। तो माँ बाप क्या करते हैं, तुम होते कौन हो हमारी औलाद की शिकायतें करने वाले, तुम्हें मेरी औलाद ही दिखती है, मेरी औलाद की बुराइयां ही तुमने करनी है, और दुनिया में कोई बच्चा नहीं है। तो फिर अगली बार वो कोई बड़ा काम भी करे ना बच्चा, तो फिर हमसाए या बड़े बुजुर्ग या आसपास के लोग या रिश्तेदार या कलीसिया के लोग फिर नहीं कुछ कहते, वो कहते हैं अच्छा लगे रहो बेटा, हमें क्या, बर्बादी तेरी और तेरे घर वालों की है, हमें क्या, हमने तो एक बार उनको बताने की कोशिश की, तेरे माँ बाप हमारे गले पड़ गए। यह रवैया गलत है। हमसाया है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, बिरादरी के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, कोई भी है, अगर कोई आपके पास आए और आपके बच्चे की शिकायत करे तो उसे गौर से सुने, उसे झिड़क ना दें, उसे झगड़ा ना करें, सुने, गौर करें उस पर और फिर उसकी तह तक पहुंचे, कोशिश करें कि पूरा मामला सुलझ जाए। तहफ्फुज और दुरुस्ती के लिए सख्ती भी करें। बच्चे हमेशा नरम जुबान नहीं मानते, हमेशा प्यार जिनसे किया जाए वो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। प्यार करें, जरूर करें, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां सख्ती भी करें। हमेशा बच्चों की डिमांड्स पूरी कर देना इलाज नहीं है। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं कि जी हम जिद करेंगे, मां बाप मान जाएंगे, हमारी मर्जी पूरी हो जाएगी। नहीं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हमें आजादी है अपनी मर्जी बताने की, अपनी विश एक्सप्रेस करने की, अपनी ख्वाहिश बयान करने की आजादी है हमें, लेकिन मां बाप को हक हासिल है, हां करें ना करें, हमारी बात पूरी हो जाए या हमें समझा दिया जाए। ये औलाद और वालिदैन में एतमाद होना चाहिए। यकीनी बनाएं ये बात कि बच्चे महफूज हैं, चाहे इसके लिए सख्ती क्यों ना करनी। खुदा का कलाम इस बात की इजाजत देता है कि अपने बच्चे की तरबियत के लिए अगर छड़ी भी इस्तेमाल करनी पड़े तो करो, सख्ती भी करनी पड़ती है तो करें, अपने बच्चे को दुरुस्त करें, इस्लाह करें उसकी, ताकि वो खतरे से और नुकसान से बच जाए। जब बच्चे मुआफी मांगें तो उन्हें मुआफ भी कर दें। होता है ना, बच्चे गलतियां कर जाते हैं, खुद खतरे में गिर जाते हैं, खुद नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन अगर बच्चे को इस बात का अंदाजा हो जाए कि उसने गलत फैसला किया, गलत कदम उठाया, गलत राह पे चला, गलत दोस्तों के साथ मिला, गलत लोगों का इंतखाब किया, गलत तालीम पर चल पड़ा, और उसे एहसास हो जाए कि उसने गलत किया था, वो वापिस आए तो उसे कबूल किया जाए, उसे मुआफ किया जाए, जैसे आसमानी बाप मुआफ करता है। यीशु मसीह ने मुसरफ बेटे की मिसाल दी थी कि वो सब कुछ लुटाने के बाद होश में आता है, पछताता है और वापस अपने बाप के घर आता है और इजहार करता है कि मैंने गलत किया था, मुझे कबूल कर ले, अपने नौकर के तौर पर ही कबूल कर ले। यानी वो पछताया, उसने तौबा की, वो लौट के आया अपने बाप के पास और बाप ने उसे ये नहीं कहा जा दफा हो जा, आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना। नहीं, जो बच्चा गलती करके पछताए, तौबा करे, मुआफी मांगे और आइंदा से अपने रवैये दुरुस्त करने के इजहार करे, उसे कबूल करें, उसे मुआफ करें, उसे एक नया आगाज फ्राहम करें, ताकि नए सिरे से वो अपनी जिंदगी अपना काम शुरू कर सके। बच्चों को खुदा की पनाह में दें, जो खुदा के परों के नीचे रहते हैं, जो हक ताला के पर्दे में, उसके साए में, उसके परों के साए में सकूनत करते हैं, वो महफूज होते हैं। खुदा यीशु मसीह ने यरूशलम की बाबत कहा कि मैंने तो चाहा था जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती है, मैं भी तुम्हें छुपा लूँ। लेकिन तुमने इन दिनों की कदर ना जानी, तुमने मुझे ना पहचाना, तुमने अपनी सलामती के दिनों को ना पहचाना, तुमने ये ना चाहा कि तुम मेरी पनाह में आ जाओ। हम अपने बच्चों को खुदा की पनाह में दें। खुदा यीशु मसीह ने इनवाइट किया था पेरेंट्स को, वालिदैन को, उसने कहा कि अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, उन्हें मना ना करो। जब हम अपने बच्चों को खुदावंद में छुपा देंगे, खुदा के परों में छुपा देंगे, जब हम उन्हें खुदा के हथियारों में छुपा देंगे, तो हमारे बच्चे दुश्मन के हमलों का शिकार नहीं होंगे। हम उन्हें ईमान के सिपर दें, हम उन्हें निजात का खौद दें, हम उन्हें रास्तबाजी का बख्तर दें, हम उन्हें सच्चाई का कमर बंद दें, हम उनके पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते दें और हम उनके हाथों में रूह की तलवार दें, तो वो दुश्मन के मुकाबले में कामयाब होंगे। कोई उन्हें नुकसान नहीं दे पाएगा, कोई उनका जिस्म, कोई उनके रूह को, कोई उनके ईमान को बर्बाद नहीं कर पाएगा, जब हम अपने बच्चों को खुदा की पनाह में दे देंगे। वालिदैन ये हर रोज अपने बच्चों के लिए दुआ करें, उनको पास बिठाएं, उन पे हाथ रख के दुआ करें, खुदावंद में अपने बेटे या बेटी को, या खुदावंद में अपने बेटों और बेटियों को मैं तेरी पनाह में सौंपता, तेरी पनाह में सौंपती हूं, तू उनकी हिफाजत कर, तू इन्हें दुश्मन के हर वार से बचा, इन्हें हर खतरे से तू बचा। दूसरों की औलाद को नुकसान ना पहुंचाए, उनका भला चाहे। फिरौन ने ऐलान किया कि इसराइलियों के लड़के मार दिए जाएं और लड़कियां जीती रखी जाएं, लेकिन दाइयों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसराइलियों के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया और खुदा ने उनके घर आबाद कर दिए। अगर मैं या मेरे खानदान का कोई फर्द किसी दूसरे की औलाद को नुकसान देने की कोशिश करेगा, खुदा मेरे ऊपर वो लेके आएगा। और अगर मैं किसी की औलाद का भला करूंगा, उन्हें नुकसान नहीं दूंगा, उनके लिए खतरे का बायस नहीं बनूंगा, तो खुदा मेरे घर को सलामत रखेगा। हम दूसरों का भला चाहें, किसी का नुकसान होता हुआ देख रहे हैं तो उसे इत्तला दें, नुकसान में हिस्सेदार ना बने, इत्तला दें, कोशिश करें उनकी मदद करने की कि आप और आपकी औलाद महफूज रहो, यूं खुदा आपके घर आबाद रखेगा, खुदा आपकी औलादें आबाद रखेगा, खुदा आपके खानदानों को मुबारक कर देगा। और जो लोग दूसरों के लिए खतरा बनते हैं, खुदा का कलाम ये बताता है कि तुम अपनी आंखों से उनका अंजाम देखोगे।